इसी तरह मुनकर से रोकना। देखिए, आपको वो हदीस याद होगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज्जा वजल ने जिब्राईल अलैहि सलाम की तरफ ये वही फरमाई कि फलां शहर को शहर वालों समेत उलट दो। तो जिब्राईल अलैहि सलाम ने क्या फरमाया, ऐ मेरे रब, उनमें तो तेरा फलां बंदा है जिसने पलक झपकने की मकदार में भी तेरी नाफरमानी नहीं की। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, उस शहर को उलट दो, वो बंदा मेरी वजह से एक साथ के लिए भी नाराज नहीं हुआ। यानी उसके सामने इतनी बुराइयां होती थी, उसके जरा भी तेवरी भी नहीं चढ़ती थी, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता था कि अल्लाह ताला की नाफरमानियां हो रही हैं यहाँ पे, जो भी सारी बुराइयां हो रही हैं, कि वो उसको कभी बुरा लग जाए, कभी वो उस चीज को समझे कि नहीं ये तो गलत हो रहा है। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जब तुम कोई बुराई को देखो तो उसको अपने हाथ से रोकने की कोशिश करो। क्या करो, अपने हाथ से रोकने की कोशिश करो, यानी मना करो, अपने हाथ खड़े हो जाओ और कहो कि मैंने ये नहीं होगा। ठीक है, अगर इसकी ताकत नहीं है, अगर आप समझते हैं कि ये नहीं मैं कर सकती, हर जगह तो जाहिर है आप नहीं हाथ से रोक सकते, तो अपनी जुबान से उसको बुरा कहो कि नहीं ये करो, उसको मना करो अपनी जुबान से। ठीक है, अगर ये भी नहीं कर सकते, अगर ये भी नहीं कर सकते तो फिर क्या करो, फिर उसको अपने दिल में तो बुरा जानो। और फरमाया, ये कमजोर तरीन ईमान है, कमजोर तरीन ईमान, यानी अगर इस ये भी नहीं है तो एक हदीस में आता है, फिर उसके अंदर राई के दाने के बराबर भी ईमान नहीं है, फिर उसमें बंदे में इतना सा भी ईमान नहीं है जो ये जिसको दिल में भी ना बुरा लगे, उसको नहीं फर्क पड़ता लोग जो भी कर रहे हैं, उसको इसको माइंड ही नहीं करता। करते हैं लोग, कर रहे हैं जी, आपको क्या, आप अपना काम करें ना, आपको क्या इतनी मुसीबत पड़ी हुई है, वो आगे से ये कहते हैं। तो याद रखिए, बुराई की नफरत होना जरूरी, तभी तो देखिए ये ना कहने की बातें नहीं होती, ये कहने की बातें नहीं होती कि देखिए आप बुराई को देखें तो आपको मना करना चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं, जब इंसान के अंदर ईमान होता है ना, ईमान, ईमान अल्लाह के ऊपर ईमान मजबूत होता है ना, जब अल्लाह से मोहब्बत बड़ी होती है ना, तो फिर उसकी नाफरमानी इंसान को गवारा ही नहीं होती, उससे बर्दाश्त नहीं होता, उसको कुछ अंदर होने शुरू हो जाता है, अंदर उबाल पड़ने शुरू होते, ये हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, उसको अंदर से होता है। किसी के बताने का बात नहीं है, नहीं जी आपने ये काम करना है, अगर बताना ही है तो देखो फिर क्या ईमान है किसी का, आपको कुछ होता ही नहीं, अब कोई आपको बताएगा जी आपको मन मुनकर देखे तो जी आपको रोकना चाहिए, ये बताने की बात है, तुम्हारे अंदर खुद इतनी ईमानी गैरत होनी चाहिए कि अल्लाह की नाफरमानी हो रही, क्यों हो रही है, क्यों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिरा में जाके बैठते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों इतनी ज्यादा पेन होती थी, इतना फील करते थे कि क्यों यहां पे ये बुराइयां हो रही, क्यों ये लोग ऐसा कर रहे हैं, कुछ कर नहीं पाते थे लेकिन कितना दर्द था अंदर, क्यों माशरे के अंदर ऐसा है। आज अपने घर के अंदर देखते हैं हम, तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमारे अपने बच्चे गलत काम कर रहे थे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अलग बात है बच्चे सुने नहीं और आप उनको बताते जा रहे हैं, मगर अगर ऐसा नहीं है और आपके सामने बच्चे गलत काम कर रहे हैं, आप कहते हैं नहीं नहीं छोड़ो ना, बच्चे हैं ना, क्या फर्क पड़ता है, छोड़ो ऐश करने दो, आपकी बेटियां ऐसे ड्रेसअप होके बाहर जा रही हैं, आपको पता है कि ये गलत है लेकिन आप कभी कहते नहीं उनको, कोई मना नहीं करते आप, आपको फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि आपने अपने टर्म्स बच्चों के साथ अच्छे रखने, तो क्या आपने नागवारी की। देखें, हमारे सियासी लीडरों को कोई बुरा कह दे ना तो हम आग बगोला हो जाते हैं, चाहे कोई सही कह रहा हो, जिस जिस की भी किसी सियासी लीडर के साथ कोई भी एफिलिएशन है, आप देख के कह के देखें जरा, आपको ऐसे लगेगा जैसे आपने कोई बारूद में तीली डाल दी हो, फट जाते हैं लोग। फिर आपकी अपनी शान में कोई जरा भी गुस्ताखी कर दे, फिर देखो वो अपने घर पहुंचेगा कैसे, ले तय करके रख देंगे। इनमें तो हम बड़े अकलमंद है, लेकिन अल्लाह की नाफरमानी हो रही हो, उसके रसूल के हुक्मों को तोड़ा जा रहा हो, तो हमें कोई फर्क ही ना पड़े। ये किस किस्म की मोहब्बत? उससे ज्यादा तो मोहब्बत आपको अपने सियासी लीडर से है, अपनी पार्टी से है। इसी तरह और लोगों के कई भी एफिलिएशंस हो सकती हैं, सिर्फ सियासत ही नहीं, कोई चीजें हो सकती हैं जिन पे वो जरा सी बात के ऊपर भड़क उठते हैं। उनके खानदान को कुछ कह दिया जाए, उनके बड़ों को कुछ, बाबूजदाद को कुछ कह दिया जाए, उनकी बरादरी को कुछ कह दे, किसी के लिए कुछ है, किसी के लिए कुछ है, फिर देखें उसके बाद वो क्या करते हैं। लेकिन क्या अल्लाह की जात और उसके रसूल की बात ही इतनी सस्ती है कि उसके ऊपर किसी को कुछ भी ना हो, अपने सामने देखते रहे, मुस्कुराते रहे। हमारे टर्म्स क्यों खराब हो भाई, हम क्यों अपने ऊपर ले, हमें क्या पड़ी है। याद रखिए, तामुरूना बिल मारूफ, फिर भी लोग कर लेते हैं, आ जाओ भाई नमाज पढ़ लो, आ जाओ भाई ये कर लो वो कर, लेकिन तनहाउना अनिल मुनकर तो ऐसे है जैसे भेड़ों के छत्ते में आपने हाथ डाल दिया। वो तो करने खड़े हो तो फिर देखो जरा, या लोग तो फिर पीछे पड़ जाते हैं, और ये किसको गवारा हो, कहते हैं हम क्यों अपने पीछे डालें किसी को, हमें क्या मुसीबत है। एक रिवायत में आता है कि जो शख्स किसी मुकाम पर खड़ा हो और हक बात कह सकता हो, और उसको तो उसको हक बात कह देनी चाहिए, क्योंकि ये हक कहना उसकी मौत को मुकद्दम कर सकता है, ना उसकी लिखे हुए रिस्क से महरूम कर सकता है, यानी ना उसकी मौत को जल्दी ले आएगा, ना उसको रिस्क से महरूम कर देगा। तो तुम बोल तो दो ना, तो कौन सी तुम्हें मौत आ जाएगी कि भाई इसको कुछ मैंने कह दिया तो मुझे मौत आ जानी। अगर तुम हक बात किसी जगह पे कह सकते तो कह दो वहां पे, वो तुम्हारी मौत जल्दी नहीं आ जाएगी, और ना ही तुम्हारा रिस्क से वो तुम्हें महरूम कर सकता है कि तुम्हारी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। लेकिन हम नहीं कहते, क्योंकि हमारे टर्म से खराब होते हैं ना। तो उल्टा आज वो वक्त आ चुका है कि इससे उलट काम हो रहे हैं, और वो उलट काम क्या है कि हम बुराई को भलाई कह रहे हैं और भलाइयों के ऊपर तेवरियां चढ़ा रहे हैं, कि जब कोई बुराई की बात हो तो हम उसपे क्या कहते हैं, उसकी बुराई की बात को देखकर क्या कहते हैं। हम किसी को देखते हैं मसलन है कि उसने ऐसा चुस्त लिबास पहना हुआ कि वो सी थ्रू है, या इतना चुस्त है कि उससे उसका सारा जिस्म पता चल रहा है, उसकी शेप। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसी औरत जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगी, खुशबू भी नहीं पाएगी, और हम क्या कहते हैं बहुत स्मार्ट लग रही है, वाह क्या बात है। हम ऐसे कमेंट्स देते हैं फेसबुक पे, उस पे हम जाके उनको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि तन्हाउना अनिल मुनकर, नहीं रोकना मुनकर से, और तामुरूना बिल मारूफ, सिर्फ इससे नहीं होता कि आप किसी को खड़े होकर डांट रहे हैं, या किसी को हुक्म दे रहे हैं, या किसी के ऊपर हुक्म चला रहे हैं, या किसी को जबरदस्ती कुछ कह रहे हैं। आप क्या करते हैं जिस वक्त आप बुराई के ऊपर एनकरेज करते हैं, तो एनकरेजमेंट किस पे होनी चाहिए थी, तामर किस पे होना चाहिए था, आपको किस पे हुक्म देना था, मारूफ पे, एनकरेजमेंट, शाबाशी, हौसला अफजाई, वो भी सारा अमर में आता है, और आपने किस पे तामुरून किया, मुनकर पे। समझ आ गई आपको बात? जिस वक्त के हम लोगों को कहते हैं कि नहीं, गुलाम आप ना पढ़ना, ये तो आपको वहाबी बना देंगे, ये कुरान इनसे पढ़ने की नहीं जरूरत है, क्या कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, कुरान से रोक रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, मारूफ का हुक्म दे रहे हैं या मारूफ से तन्हाउना कर रहे हैं। आज तो मारूफ से मना किया जाता है और मुनकर को अप्रिशिएट किया जाता है। कोई हिजाब लेना शुरू कर दे तो तुम क्या मासी बन गई हो, तुम क्या, देखो जरा अभी वो तुम्हारी एज आई है, हटाओ इसको, क्या किया हमने। खुद खुद सोचें, हमारे कमेंट्स सोचें, हमारी इनकरेजमेंट सोचें, किस चीजों के ऊपर होती है, खुद आप देख लें। कोई क्लासें लेना शुरू हो गया, हाँ देखा ना तो तुम हर वक्त बैठी रहती हो इसीलिए इतनी मोटी हो गई हो, वेट गेन हो गया तुम्हारा, या तुम बैठी पढ़ती रहती हो ना, हाँ देखो अपनी हालत क्या तुमने बना ली, शक्ल देखो अपनी, बस पढ़ाइयां करती रहती, अब कोई मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है उसको नहीं कहेंगे, कोई दिन रात जॉब कर रही है उसको नहीं कभी कहेंगे कि तुमने अपना हाल क्या बना लिया, इसको कहेंगे, क्योंकि तो ये हमसे नहीं गवारा होता। मुनकर के ऊपर हम शाबाशियां देते हैं, और मारूफ कोई करे तो हम उसको डिस्करेज करते हैं अपने कमेंट से, अपनी बातों से। और आज हमारी बातें क्या है, बहुत अच्छा डांस करती है, इतना अच्छा खूबसूरत इसका डांस होता है ना, देखने वाला है ये माशाल्लाह। हम मारूफ के ऊपर कैसे हम इनकरेजमेंट कर रहे हैं, ये देख लें, ये मारूफ है, ये हमारे नजदीक मारूफ बन गया। तो पहले तो इल्म लेने की जरूरत है ना, मारूफ और मुनकर है क्या। हमने तो मारूफ और मुनकर के क्या किससे लिए, सोसाइटी में जिस चीज को कहा जा रहा है, चाहे वो नंगापन है, चाहे वो जिना है, चाहे वो डेटिंग है, चाहे वो बेहयाई के और काम है, वो सारे वो हमारे लिए मारूफ बन चुके हैं, सब मारूफ है। क्यों? इसलिए कि सब उसको कह रहे हैं, अगर किसी ने बेपर्दगी में कोई घूम रहा है तो वो हमारे लिए मारूफ है, और कोई हिजाब और अबाय में है तो वो हमारे लिए मुनकर बन चुका है। किसी की गर्लफ्रेंड नहीं है, किसी का बॉयफ्रेंड नहीं है, तो ये हमारे लिए मुनकर है, मारूफ हुआ है कि देखो इसकी कितने फ्रेंड्स हैं। यानी हम आप सोशल मीडिया पे देखें किन चीजों को मारूफ किया जाता है, किनको मारूफ कहा जाता है, और फिर उसके ऊपर कमेंट्स देख लें। कोई हलाल कमा रहा हो तो उसको तो कहा जाता है तुम तो पागल, कोई हराम से अपना बिजनेस फ्लरिश कर ले और लाखों से करोड़ों बना ले तो वो हमारे नजदीक बड़ा अकलमंद है, क्या बात है इसकी। खुद देखें कि आज वो उम्मत जिसका काम ये था कि वो और लोगों को भी मारूफ की दावत देती और मुनकर से रोकती, वो उम्मत तो खुद ये भूल चुकी है कि मारूफ होता क्या और मुनकर होता क्या। जब आप शादियों पे जाती हैं तो आप किन चीजों के ऊपर लोगों को एप्रिसिएशन देते हैं, एनकरेजमेंट देते हैं, तो आप सिर्फ खुद गुनाह से बच जाएं ये काफी नहीं है, जब तक आपके अंदर गुनाह की नफरत ना हो, और ये मतलूब है आपसे, ये मतलूब है, और ये आपकी गैरत ईमानी का हिस्सा होना चाहिए कि आप गुनाह को गुनाह समझें, गुनाह को गुनाह समझे खुदा के लिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर तुम अमर बिन मारूफ व नहीं अनिल मुनकर के फरीजे को छोड़ दोगे तो बहुत जल्द अल्लाह तुम्हें अपने अजाब की लपेट में ले लेगा, फिर तुम उससे दुआएं मांगोगे, तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं की जाएंगी। तो अमर बिन मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का फरीजा छोड़ देना, तो क्या हम तो अमर किसका कर रहे हैं, मुनकर का, और नहीं किससे कर रहे हैं, मारूफ से। हम किस कदर पस्ती में गिर चुके हैं, उम्मते मुस्लिमा की कश्ती आज तूफान में फंसी हुई है, हम वो लोग हैं जिनका चमन उजड़ चुका है। ये ऐसी सोच, ऐसे रवैये, हमें दूसरों को बदलना था, उनको राह दिखानी थी, हम इंसानियत के लिए खड़े किए गए थे, और हमारे अपने ही हाल हो गए। आज मुनकर हमारे सामने टीवी पे चलता है, मुनकर हमारे सामने फोन पे चलता है, मगर हमें कोई परवाह नहीं, हम खुद भी उसके अंदर शामिल होते हैं, इसमें क्या बात है। ऐसे ड्रामे देखने से क्या फर्क पड़ता है, ऐसी फिल्में देखने से क्या है, उसमें जो लैंग्वेज यूज हो रही है, उसमें जो सीन आ रहे हैं, हमें नहीं कोई फर्क पड़ता, हम क्यों रोके। तो ये इसमें क्या बुराई है, जब हमें खुद ही हम अंधे हो गए तो हम किसी को क्या बताएंगे। और ये कुरान पढ़ने वालों के हालात है, और उनके क्या कहने, और को तो क्या शिकायत करनी, उनको तो बताना था, उनको तो को तो खुद नहीं पता, क्योंकि ये काम किस में होगा, सिर्फ गैर मुस्लिमों में नहीं होगा, ये काम हर एक के लिए होगा, अपने लोगों में भी होगा, बाहर वालों में भी होगा, मुसलमानों में भी होगा, गैर में, क्योंकि मुसलमानों में भी जरूरत होगी इसकी, तामुरूना बिल मारूफ की और तनहाउना अनिल मुनकर की, और बाहर वालों में भी होगी, बाहर वालों के लिए डिफरेंट तरह से होगा, अपने अंदर वालों के लिए डिफरेंट होगा। तो अगर उम्मीद की जरा सी किरण नजर आती है ना, तो वो इन स्टूडेंट्स में नजर आ सकती है जो आज पढ़ रहे हैं, जो जो औरतें पढ़ रही हैं इन इदारों में कुरान पाक को सीख रही हैं, कि ये घर बदलें अब, और इनसे आगे उम्मत बदले, आगे नस्लें बदले, ये बस इनसे उम्मीद की जा सकती है, वरना आवे का आवा बिगड़ा हुआ। और ये है वजह हमारी जिल्लत की आज, क्योंकि आज आप आगे भी पढ़ लेंगे, आपको खुद ही पता चल जाएगा जिल्लतें कब आती हैं, खुद ही आज आपके लेसन में पता चल जाएगा। ये जो आप, हम हर वक्त ये सोचते हैं ना, अगर हम हक पे हैं, हम मुसलमान हैं, देखिए ना, आपको मामूली बात नहीं है, हम मुसलमान हैं, अल्लाह पर हमारा ईमान है, आखरत पर ईमान है, रसूल पे, मैं हम पे जिल्लत क्यों है दुनिया में? बहुत लोग ये क्वेश्चन करते हैं, क्यों हम जलील हो रहे हैं, क्यों हम ख्वार हो रहे हैं सारी दुनिया में, क्यों हमारी बेइज्जती? तो आज इसका आंसर मिल जाएगा। तो ये अब जो उम्मीद है ना, वो आप जैसे लोगों से है, उनसे नहीं है जो नहीं कुरान पढ़ते। लेकिन अगर आप लोगों ने भी ये छोड़ दिया, तो फिर कौन करेगा, कौन करेगा ये काम? तो इसके लिए अब हमें देखना है कि हमें कैसे ये काम करना है, अपने दायरे बनाने। पहले हमारा दायरा अपनी जात है, अपनी जात के ऊपर तो अमर बिल मारू व नहीं नल मुनकर करो ना पहले, फिर उसके बाद बाहर है, फिर उसके बाद उससे बाहर है, फिर आप अपने, पहले औलाद आती है, फिर अपना घर में जितने अफराद हैं, फिर अपने रिश्तेदार हैं, फिर अपने दोस्त अहबाब हैं, फिर और गैर लोग हैं, फिर और वर्ल्ड लेवल पे आप कहीं जुल्म होता हुआ देख रहे हैं, उसके खिलाफ आवाज जितनी भी आप बुलंद कर सकते हैं, तनहुना अनिल मुनकर में है, जुल्म कितना हो रहा है दुनिया में, उसके खिलाफ आवाज उठाने को हमें क्या होता फिर? नहीं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है, पहले हम मतलब अपने आप को इस जगह पे रखें कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये मेरा फरीजा है। पहले तो ये सोचें, मैं कुरान पढ़ रही हूं, मैंने ये आयतें पढ़ ली, मुझे ये जरूरी करना। और फिर हर जगह पे जहां पे मैंने आपको बताया ना, नेकी का हुक्म देना आसान है, मुनकर से रोकना मना बहुत मुश्किल है, वो काम ज्यादा मुश्किल है, लेकिन वो जरूरी है। हम क्यों उस महफिल में जाते हैं जहां पे अल्लाह के दीन का मजाक उड़ाया जाता है, जहां अल्लाह के अकाम की धज्जियां बखेरी जाती हैं? क्यों जाते हैं वहां? डर है कि मेरे रिश्तेदार नाराज ना हो जाए, मेरे दोस्त मुझे छोड़ ना दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे ना, अल्लाहुम्मा इन्नी औजु बिका मिन यौमि सू मिन लैलति सू मिन सआति सू मिन जारि सू, बहुत सारी लंबी दुआ है कि अल्लाह बुरे साथी से भी मैं तेरी पनाह मांगता हूँ। तो क्यों हम उठते बैठते हैं ऐसे लोगों के साथ जिनके साथ उठने बैठने से हमारा दीन खराब हो जाता है, या उठने बैठने से हमारे दिल से अल्लाह रसूल की मोहब्बत कम हो जाती है, दीन की मोहब्बत कम हो जाती है? क्यों? कुछ तो मोमिन बने, कुछ तो ईमानी गैरत होनी चाहिए। कोई ईमानी गैरत नहीं है। तुम्हें तो लिन्नास, लोगों की इसलाह के लिए पैदा किया गया था। अब नहीं कोई अमर बिल मारूफ कर सकते, नहीं अनिल मुनकर कर सकते, तो क्यों बैठते हो ऐसी जगहों पे? जब अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर होगा ना, तो दुनिया में इसलाह होगी, दुनिया में इसलाह होती है फिर। और फिर जब भी फिर बेवाओं, यतीमों, मिसकीनों का भी ख्याल होता है, तभी जो रिश्तेदारियां तोड़ रहे होते हैं उनको कोई कहने वाला होता है, तभी कोई इंसान बेहयाई से भी बचता है, तो भाई लोग मुझे ये कहेंगे, लोगों का डर होता है, लेकिन जब कोई किसी को कहने वाला ही नहीं, बिद्दतें कर रहे हैं लोग, हम क्यों कहें? जाके खुद ही उन्हीं बिद्दतों के मजलिसों में बैठ जाते हैं, नहीं फिर उन्होंने बुलाया तो अब क्या करें? कहना ही नहीं हमने कि भाई ये बिद्दत है, ये नहीं करो, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं है, कहते ही नहीं। क्यों करें? खाने को मिलता है वहां पे, दावत होगी, मजे मजे के खाने मिलेंगे, तो जाएंगे हम वहां, चाहे कोई भी बिद्दत की मजलिस हो। तो किधर आज हम खड़े हैं, खुद सोचें, किधर आज हमारी ईमानी गैरत किधर है, ये बताइए। तो ये काम करना है, और इस काम में जो एहतियातें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, कि जो बहुत एहतियात की बातें हैं, बहुत जरूरी है जाननी, वो ये कि जब हम ये काम करेंगे ना, तो बाज दफा होता ये है कि अपने अंदर तकब्बुर आने लगता है, अपने आप को इंसान बड़ा नेक समझने लगता है, फिर वो तो उनके बस खामियां नजर आने लगती हैं, फलाना वो भी ऐसे कर रहा है, फलाना वो भी ऐसे कर रहा है, वो देखो लोग क्या करते हैं, वो देखो वो क्या करते हैं, इनको तो समझा समझा के थक गए हैं। तो अब क्या आने लगता है आहिस्ता आहिस्ता अपने अंदर तकब्बुर, कि मैं तो देखो कितनी अच्छी हूं ना, और ये देखो कितने बुरे, देखा ये कैसे करते हैं, देखा ये क्या। अच्छा सिवाय उस बंदे के, बाकी सारों को वो बातें कहनी, उसको नहीं जाके कहनी कि तुम कुछ गलत कर रहे हो, हालांकि मना तो उसको करना था ना जो बुरा कर रहा था। हम बस प्रचार करते हैं इधर उधर। तो अपने अंदर तकब्बुर आने लगता है कि हम कितने अच्छे हैं ना, देखो हम तो नहीं ये करते। इस चीज से बहुत केयरफुल रहना, क्योंकि शैतान बड़ी जल्दी नेकी का जो एक तकब्बुर है वो इंसान के अंदर पैदा कर देता है। दूसरे सीधे फिर काम शुरू कर देते, बहुत गुस्सा आने लगता है। तुमने गुस्सा नहीं किया था। फिर तीसरी चीज क्या होती है, अपनी फिक्र खत्म हो जाती है। फिर बस हर टाइम अब मैं उसको किसको मना करूं, तो उसको किसको मना करूं। मैंने आपको क्या पहले बताया, अपने आप के ऊपर सबसे पहले वर्क करना शुरू करना है। लेकिन ये चीज हमें रोकना नहीं चाहिए कि हम किसी को क्या मना करेंगे, हमें तो खुद में इतनी बुराइयां। तो ये याद रखिए कि एक असलाफ में से किसी ने फरमाया बड़ी अच्छी बात, कि अगर हम इस चीज को देखें कि पहले मैं खुद सही हो जाऊं फिर उसके बाद दूसरों को बताऊंगा, मैं पहले खुद कामिल हो जाऊं फिर दूसरों को मना करूंगी, मेरे अंदर तो खुद बुराई है, तो वो फरमाते हैं कि फिर तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई ये काम नहीं कर सकता था, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तो कोई भी परफेक्ट नहीं, फिर तो किसी को भी नहीं ये काम करना चाहिए, क्योंकि परफेक्ट कौन है, सारे ही पहले फिर अपनी अपनी फिक्रें करो। तो ठीक है वो अपनी फिक्र भी करनी है, लेकिन साथ ये काम भी करना है। मगर जो मैं पॉइंट बताना चाहती हूँ वो ये है कि ये ना हो कि दूसरों की फिक्र करते करते अपनी भूल जाए, अपनी फिक्र है नहीं, अपने खुद क्या करना है। ये बच्चे ऐसे करते हैं, हस्बैंड वो करते हैं, हमसाए ये करते हैं, मेरी दोस्तें तो ऐसा करती हैं, फलाने ये करती है, हर टाइम दूसरों के ऊपर नजर। बस घर वाले भी तंग पड़ जाएं कि क्या मुसीबत, इसने कुरान पढ़ना क्या शुरू कर दिया, हमारे ऊपर मुसीबत डाल दी। ये तरीके नहीं होते। तो हिकमत इसमें बहुत जरूरी है, कि हिकमत के साथ हमें चलना है। मैंने आपको ये बताया कि अमर बिल मारूफ का ये मतलब नहीं है कि आप डंडे लेके खड़े रहे, नहीं अनिल मुनकर का ये नहीं मतलब, आप समझ आ गई ना कि किस किस तरह के मतलब है, कहां आप किस तरह से डील करेंगे, ये भी हिकमतों के साथ है। ठीक है, तो अब ये ना हो दूसरों की कमियां हमें अपने आप की कमियां देखने से माजूर कर दें, दूसरों की कमियां देखते देखते हम अपने आप को ही भूल जाएं। खुद तो कुछ कर लो सीधा, हर वक्त दूसरों का, हर वक्त दूसरों को भाई बस करो, कभी अपने ऊपर भी तवज्जो दे दो, अपने अंदर भी झांक लिया करो, अपने आप को अमर बिल मारूफ वाली कर कराना। अगर हमारे से अपने आप से ही नहीं कराया जाता, हमने क्या किसी को कहना। अपनी जात के ऊपर तो सबसे पहले डंडा चला सकते हैं ना, वो अपनी जात को छोड़ा हुआ है, बस लोगों के लिए बस उधर बने हुए हैं, मास्टर इधर बनी हुई है, टीचर उधर बनी हुई है, कुछ और। तो ये बात को भी बहुत ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये कुछ तीन चार पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने इस काम को करने में। एक क्या, अपने अंदर तकब्बुर ना आने दीजिएगा। दूसरा क्या, दूसरों की कमियां आपको अपने आप को देखने से आजाद ना कर दें, अपनी परवाह करने से आजाद ना कर दें। तीसरा क्या, गुस्से में नहीं आना है, गुस्से में आने की वजह से भड़कते फिरे, उसके बाद गुस्सा करते फिरे, और बजाय अमर बिल मारूफ करने के और ही मुसीबत हो जाए, कि कुछ और ही कर दिया उसको, बिल्कुल ही दीन से भगा दिया, इतना उसके ऊपर बरसे, इतना उसको वो किया। बाज का मैंने सुना, उन्होंने कहा जी फला वो तो अपने बच्चे के ऊपर इतना वो करता था, उसने यानी उसको यानी अपने बच्चे को नमाज के ऊपर ऐसा मारता और इस तरह का उसके ऊपर टॉर्चर करता था कि वो बच्चे को नमाज से ही नफरत हो गई। लो अभी इसके अमर बिल मारूफ का क्या फायदा हुआ, क्या फायदा हुआ उसका। तो ये बात है कि हिकमत इसके अंदर बड़ी जरूरी है। इस काम को अगर हिकमत से नहीं करेंगे तो उल्टा भी असर हो सकता है। बाज बच्चियां मैंने देखा, उन्होंने मुझे खुद बताया कि हम इसलिए नहीं मस्जिद जाते, वहां पे ये आंटियां हमें इतना कमेंट्स करती हैं, इस तरह की बातें हमें सुनाती हैं, तो हम नहीं जाते। तो इसमें पहले मुझे इतना मुझे खुद डर लगता है ना ऐसी चीज से कि मुझे बहुत देर में किसी को कहने से पहले बहुत सोचती हूँ, प्लान करती हूँ कि कैसे मैं इसको किस तरह से बात करूं, क्यों, इसलिए ये ना हो कि मेरी किसी गलत अप्रोच से ये और ही उससे भाग जाए, ये उसको नफरत हो जाए, या ये मस्जिद ही ना आए, या ये इस काम से ही ना इसको हो जाए कि इस काम की वजह से मुझे बातें सुननी पड़ती। तो इसके अंदर बड़े तरीके के साथ चलना होता है, ठीक है, तो ये काम करना है, लेकिन करना कैसे है ये भी हमें सोचना चाहिए। ये कहना बड़ा आसान होता है, चलो तुम ये खत्म करो, चलो ये करो वो, बस ये करके सारा दिन यही बोलते जाए, ये बड़ा आसान होता है हिकमत के साथ, क्योंकि ये काम ना खैर ख्वाही का काम है। ये काम ऐसा नहीं है कि बस हमने सर से उतारना, जी हमने तो कह दिया था, हमारी भला से अब करें नहीं करें, नहीं, ये खैर ख्वाही, जैसे पैगंबरों में खैर ख्वाही होती थी ना, ये खैर ख्वाही का काम है ये। ऐसे मैं आपको अगर बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो पता है ये काम क्या है, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में, कि आप खुद जाग गए हैं, अब आपने सोतों को जगाना है, अब आपने सोतों को जगाना है, बस ये काम है। आपको खुद पता चल गया है कि क्या, आप जाग गए, आपको खुद पता चल गया कि खतरा सामने है क्या, जैसे कुछ लोग सोए हुए हैं वो खतरे में है, आग लग गई है, आग सामने है, अब कैसे जगाएंगे उनको, ठीक है। और अगर ये काम ना करें, बिलफर्ज हम कहते हैं नहीं जी हमसे नहीं, हम नहीं करते, आगे भी आपको पता चल जाएगा, लेकिन एक सूरह माईदा की आपको मैं आयत बताना चाहती हूँ, 78-79। बनी इसराइल की आपको पता है पहले उनके जिम्मे था ना ये काम, वो खैर उम्मत थे, उनको अल्लाह ने फजीलत दिया, पढ़ चुके हैं सूरह बकरा में, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है, लुइन अल्लदीन कफरू मिन बनी इसराइल अला लिसान दाऊद व ईसा इब्न मरियम, लानत की गई बनी इसराइल पे जुबान से ईसा अलैहि सलाम की और दाऊद अलैहि सलाम की, यानी दोनों नबियों ने उनके ऊपर लानत की, क्यों क्यों लानत की, उनकी तो ये कौमें थी, दालिका बिमा असौ व कानू यअतदून, ये इसलिए कि वो नाफरमानी करते थे, हद से बढ़ने वाले थे। और दूसरी बात सुने जो 79 आयत में, कानू ला यतनाहौना अन मुनकर फालूहू, वो नहीं रोकते थे मुनकर से जो उन्होंने किए थे, जो बनी इसराइल मुनकर करती थी वो इससे ये नहीं, ये लोग रोकते थे, तब भी समा क्या नहीं है, कितनी बुरा काम है जो होता है, क्यों नहीं रोकते थे, इस वजह से उनके ऊपर लानत की गई। ये अल्लाह ताला को इस बात के ऊपर गजब आता है ना कि उसकी नाफरमानी देख रहे हो और तुम्हें नहीं कुछ फर्क पड़ता, तुम टसे मस नहीं होते, ये अल्लाह को गवारा नहीं है, ये कैसे हो सकता है एक बंदे में ईमान हो और उसको कोई फर्क ही ना पड़े, अब वो हंस हंस के बैठा हो उसी मजलिस में कि नहीं कोई बात नहीं फिर माइंड कर लेंगे, वो मुस्कुराता रहे और उसके माथे पे तेवरी भी ना चढ़े, चाहे वो अपने बच्चे हैं, चाहे वो दोस्त अहबाब हैं, चाहे वो रिश्तेदार हैं, नहीं, माइंड करेंगे वो, फिर उनका माइंड करना बुरा लगता है और उनका माइंड करना गवारा नहीं है, और अल्लाह ताला माइंड कर ले तो ठीक है। एक हदीस आती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स अपने आप को हकीर ना जाने, सहाबा ने कहा या रसूल्ला हम में से कोई शख्स कैसे अपने आप को हकीर जान सकता है, आपने फरमाया वो ये गुमान करे कि उसके ऊपर कलाम की गुंजाइश है, फिर वो कलाम ना करेगा, यानी कुछ कह सकता है मगर नहीं कहेगा, तो अल्लाह अज्जा वजल कयामत के दिन इससे फरमाएगा तुम्हें मेरे मुतल्लिक किस चीज ने कलाम से रोका था, क्यों नहीं तुमने कुछ बोला, वो कहेगा लोगों के खौफ ने, अल्लाह ताला फरमाएगा मैं इस बात का ज्यादा हकदार था कि तुम मुझसे खौफ खाते ना कि तुम लोगों से डर रहे थे। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब बनी इसराइल गुनाहों में मुब्तला हो गए तो इनके उलमा ने उनको मना किया था, शुरू में मना किया था लेकिन वो बाज नहीं आए, जब वो बाज नहीं आए तो उलमा उनकी मजलिसों में बैठते रहे और उनके साथ मिलके खाते पीते रहे, ठीक है। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो अल्लाह ताला ने उनमें से बाज के दिल उन जैसे ही कर दिए, फिर यानी फिर सबके दिल एक ही हो गए, अब उनको वो बुराई बुराई नहीं लगती थी, इसीलिए आप देखें ना जब हम बुराइयों के साथ बैठते रहते हैं, बुराइयों को देखते रहते हैं, उनको वॉच करते हैं, फिर उसके बाद वो बुराइयां हमारे लिए कितनी कॉमन हो जाती हैं, फिर फिर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देख लें, आज से कोई 20-25 साल पहले कई चीजों के नाम, ये जो आज मैं कौमे लूट के अमल का कह रही हूँ, ये यकीन जाने यानी जब तक मैं बड़ी हो गई थी हमें पता ही नहीं था कि ऐसी भी कोई चीज होती है। हमें नहीं पता था, इन मुल्कों में आके पता चला। इसी तरह ये नंग धड़ंग टीवी पे इन चीजों में कोई होता ही नहीं था इस तरह की चीजें। और आज देखें क्या लिबास हैं और क्या टॉपिक्स हैं और क्या चीजें दिखाई जाती हैं। इसी तरह कितनी सिंपल शादी ब्याह होते थे, कितने सिंपल होते थे, आज देख लें कि वो क्या बन गए। पहले लोग तवायफों के अड्डों पे जाया करते थे कोई इस तरह की नाच गाने देखने के लिए और नाचती औरतों को देखने के लिए, आज लोगों ने अपनी बेटियों से नाच करवाते, अपनी बहनों को नाचते हुए लोगों के सामने नचवाते मेहंदियों पे और इन पे, और बड़े फखर करते। वो चीजें जो कितनी बुरी समझी जाती थी, आज क्या हाल है, क्यों ऐसे, क्यों हमारे पैमाने बदल गए? क्योंकि बुराइयों को देख के हमने उनको रोका नहीं। जब बुराइयां शुरू हो रही थी तो हमने, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ा, हमने कहा इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, क्या है ना, इतनी भी नहीं होना चाहिए, क्या है, एंजॉय करने देना। आप लोग तो बहुत ही ज्यादा रिजिड हो जाते हैं। तो जब आप वो जो आगे जाके एक बड़ी बुराई बननी है उसके असबाब को नहीं रोकते, वहीं से उस चीज को वहीं खत्म नहीं करते जब वो शुरू हो रही होती, तो फिर आगे जाके यही होता है जो आज हो रहा है, यही होता है। जब छोटी छोटी बच्चियों को भी ऐसे लिबास पहना जाते तो वो बड़ी होके भी फिर वैसे ही पहनती, फिर आप क्यों रोकते हैं? जब इस तरह की चीजें देखिए एक दिन में नहीं होती, ये टाइम लगता है कि शैतान पहले छोटी डोज देता है। क्यों कहा गया कि वला तत्तबी खुतुवात शैतान, इसके कदमों की पैरवी ना करो, क्योंकि ये इसके कदम है, ये एक छोटी डोज देता है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर एक एक स्टेप लेके जाता है आगे। ये एक दिन के नहीं काम होते। तो शैतान किस तरह हमारे वो नॉर्म जो आज हमारी नानियां दादियां जिंदा होके आ जाएं और वो देखें तो वो तो हैरान ही हो जाए, सिर्फ उनके टाइम से आज तक इतना बदल चुका है, तो उससे पहले का तो क्या कहने। सहाबा के दौर का तो बिल्कुल ही आप छोड़ देना, हम सिर्फ 50 साल भी पीछे चले जाएं तो क्या क्या से क्या बदल चुका है आज। और ये सिर्फ इस वजह से कि हम बुराइयों को बर्दाश्त करते रहे, हमने कुछ नहीं बोला और वो आगे से आगे बढ़ती चली गई। आज शराबें पीना या जिनाकारियां या ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या जितनी और आप बुराइयां देख लें, बेहयाइयों के सीन्स देखना, नाच गाने को वॉच करना, ये सब चीजें कुछ भी मुश्किल कोई बात ही नहीं रह गई। झूठ बोलना, रिश्वतें लेना, धोखेबाजी करना, हराम को खाना, हराम कमाइयां करना, ये कोई मसला नहीं है। औरतों के चुस्त लिबास पहनना, ये कोई कोई प्रॉब्लम ही नहीं। हाथ पे हाथ मार के गैर महरमों से बातें करना, क्या इसमें प्रॉब्लम? आप पागल लगते हैं, वो तो नॉर्मल लगते हैं, क्योंकि हम बर्दाश्त करते चले गए, हमने इसको अलाउ किया, हम मुजरिम थे, इस वजह से आज का ये दिन देखना पड़ा। ठीक है, कहां तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी तक एहतियात बताई कि जब बच्चे बड़े जाएं उनको साथ ना लेटाओ, जब दो बच्चे, दो लड़के या दो लड़कियां एक ही बिस्तर के अंदर, एक ही लिहाफ के अंदर इकट्ठे ना हो, कितनी एहतियातें बताई, हमने कोई फॉलो ही नहीं किया, हमें क्या, हम तो ना कुरान को जाना ना सुन्नत को जाना, हमें क्या पता। तो बुराइयां पनपने लगी फिर, और आज स्कूलों के बच्चों को भी पूछ लो तो उनको भी इन बातों का पता, कहां से पता चलेंगे, बुराई को आम होने की वजह से। तो बुराइयां आम इस तरह से होती हैं, और बनी इसराइल के उलमा ने पहले उनको मना किया, फिर उनके साथ ही खाते पीते रहे, उनके बाद कोई कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसके बाद फिर सबके दिल एक जैसे हो गए, यानी वो जो करने वाले थे वो भी और जो ये थे, अब इनको ये बुराई लगती नहीं जब उनके साथ बैठ के मजे कर रहे। अल्लाह अकबर। और फिर एक और हदीस में आता है जो अबू दाऊद की, इब्ने माजा की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स किसी कौम में रह के गुनाह कर रहा हो और वो लोग इसको गुनाह से रोकने पर कादिर हो और ना रोके कि हमें क्या मुसीबत है, हम क्यों रोके, तो अल्लाह ताला इन सबको मरने से पहले अजाब में मुब्तला करेगा। आपको? फिर एक और जगह पे आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम मेरी उम्मत में उन लोगों को देखो जो जालिम को जालिम कहने से डरे तो तुम उनसे अलग हो जाओ। फिर एक और हदीस में आता है, इब्ने हब्बान की है, तरगीब व तरहीब में भी है, जो शख्स हमारे छोटों पर रहम ना करे और हमारे बड़ों की इज्जत ना करे और नेकी का हुक्म ना दे और बुराई से ना रोके वो हम में से नहीं है। अब और कितनी हदीसें चाहती हैं, और कुरान की आयत ये सामने है, और हम में से नहीं है तो फिर देख लेना आज आप हमारी जिल्लतों की जो दुनिया में हालात हैं, जो हमारे जवाल के हालात हैं, वो आप सब देख रहे हैं। फिर हम पूछते हैं क्यों ऐसा हो रहा है हमारे साथ, क्यों ऐसा हो रहा है? नहीं, तुमने ये काम ही खत्म कर दिया, तुम तो खैर उम्मत बने ही नहीं। हजरत उमर के कॉल के मुताबिक अब जो इस शर्त को पूरा करेगा वो ही खैर उम्मत में से है, जो ये काम नहीं करेगा वो उसमें से नहीं है। तो हम वो फखर तो बहुत कर रहे हैं कि हम खैर उम्मत हैं, देखो हम बेहतरीन उम्मत, हमारे बारे में ये हादिस हमारे बारे में नहीं है, ये उन लोगों के बारे में है जो ये काम करते हैं, वो है खैर उम्मत। और हम किधर हैं? हमारे अपने खानदानों में जुल्म हो रहा होता है, हमारी अपनी बाज दफा माएं हमारी भाभियों के साथ जुल्म कर रही होती है, हमारे अपने भाई बाज दफा अपनी बीवियों के साथ कोई गलत बात कर रहे होते हैं, हमारी अपनी बहनें गलत काम कर रही होती है, हम नहीं रोकते, हम कहते हैं हमें क्यों, हमें क्या, मैं क्यों बिगाड़ूं? उनको भी आप अमर बिल मारूफ करेंगे और नहीं अनिल मुनकर करेंगे, मगर वालदैन को करने का एक और तरीका होगा। तो ये हम देखते हैं अपने सामने मुनकरात, मगर हम अगर नहीं कुछ बोलते, नहीं कुछ कहते, नहीं हमें कुछ बुरा लगता, तो बुरा जान लो, वरना तो राई के दाने के बराबर भी ईमान नहीं है। ये कितनी बड़ी बात है, कैसे गवारा करते हैं हम अपनी दोस्तों से सुनते हैं वो गलत कर रही है, हम कहते हैं हम क्यों कहें, मेरी दोस्ती खराब होती है, वो अपने हस्बैंड के साथ गलत कर रही है या अपने ससुराल में गलत कर रही है, उसको एनकरेज करेंगे, उसको और हौसला अफजाई करेंगे, तू सही कर रही है ऐसे ही कर, क्योंकि हमने उसकी हाँ में हाँ जो मिलानी है, हमने उसको खुश करना है बस। अब मुनकर कर रही तो करती रही, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अगर इसको कहूंगी कि नहीं तुम गलत कर रही हो देखो, तो वो उसको बुरा लगेगा, तो मैं क्यों कहूं? तो इट्स एवरीवेयर, आप ये नहीं कर सकते कि आप ये नहीं सिर्फ कह सकते कि कश्मीर में अगर जुल्म हो रहा है तो वो ही बस मुनकर है, उसके खिलाफ ही सिर्फ मैंने आवाज उठानी, हर जगह आप जिधर देख रहे हैं, जिधर का सुन रहे हैं, जो मुनकरात आप देखते हैं उनको रोकने की कोशिश करें, आप वहां जाके तो नहीं आप रोक सकते, ना हाथ से रोक सकते, कुछ जुबान से ही बोल दो, कई और जगह है जहां पे आप जुबान से भी नहीं बोल सकते, वहां पे जुबान से बोलने पे भी कैद कर दिया जाता है, तो दिल में ही बुरा जान लो, कुछ तो करो, या कुछ भी नहीं है तुम्हारे बस में, उस पे भी डरते हो, तो जितनी आपकी कुदरत है उसके मुताबिक तो एक्शन लेना। वलो आमन अहलुल किताबी लकाना खैरन लहुम, अगर अहले किताब ईमान ले आते तो बेहतर होता उनके लिए, यानी अहले किताब अगर ये काम करते और वो भी ईमान ले आते तो उनके लिए ये बहुत अच्छा होता, वो भी खैर उम्मत में से हो जाते ना फिर, वो भी ईमान ले आते अगर। लेकिन क्या है, मिनहुमुल मोमिनुना, उनमें बाज मोमिन हैं, अक्सरहुमुल फासिकून, लेकिन अक्सर उनके फासिक हैं, उनमें जो मोमिन हुए अब्दुल्ला बिन सलाम थे, देखें अब कितने बड़े वो आलिमे दीन थे उनके, लेकिन उन्होंने जरा भी इस चीज की परवाह नहीं की कि मेरे साथ क्या ये करते हैं, वो ईमान ले आए जब उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि हक पे हैं, हक बात, चंद सवालात किए थे और बस ईमान ले आए। इसी तरह सालबा बिन साईद थे, उसैद बिन साईद थे, असद बिन उबैद थे, काब अहबार थे, ये सारे वो थे जो बड़े बड़े उनके थे उलमा और बड़े बड़े इनके लोग थे, लेकिन वो इस्लाम लेकर आए, मगर अक्सर इनमें से फासिक हैं। और आप देख लें आज भी आप देख लें कि अक्सरियत इनकी फासिक फासिक फाजिर है, अपने दीन पे भी नहीं चलते, किसी और का दीन क्या अपनाने की बात करनी, अपने दीन पे भी नहीं इनको चलने की तौफीक है। आप देख लें इनके हाँ भी, इनके भी बाइबल में जिना हराम है, सूद हराम है, वो कहाँ इसको फॉलो करते हैं, अक्सर हुमुल फासिकून। अल्लाह ताला इन आयात को समझने की और इन पर अमल करने की हमें तौफीक अता फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। तिलावत सुनिए।
كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون.